हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक लाल आंखों से सिद्धार्थ को आकांक्षा को अंगूठी पहनाते हुए देख रही थी। उसे सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिलहाल ये देखने के बाद झलक सीधा अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों में चलने की ताकत ही न बची हो। तभी दादाजी ने तुरंत झलक का हाथ थामकर कहा था, कहाँ जा रही है बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी आज से बिज़नेस क्लासेस हैं और साथ साथ कुछ और भी क्लासेस हैं जो तुम्हें अटेंड करनी हैं। तुम्हें इन सारी बातों को अपने सिर पर सवार नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल ढंग से जीनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनसे नफ़रत मत करो या उनसे बदला मत लो, लेकिन दुश्मनों को सज़ा देने से पहले उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जैसे ही दादाजी ने इतने शांत और ठंडे ढंग से ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग थोड़े से हैरान हो गए। अनामिका तुरंत आगे बढ़ते हुए बोली थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? वहीं आरव की आंखें टीवी पर चल रही लाइव खबरें देखकर सदमे में थीं। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन दादाजी की बात सुनकर अनामिका अब खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं दादाजी? दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए, वो भी इनके जैसे घटिया लोगों को। आपने देखा नहीं इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने मेरे पापा की पूरी ज़िंदगी के हसीन और खूबसूरत साल छीन लिए। मेरे मम्मी पापा के अलग होने का कारण यही लोग हैं। मेरी बहन की ज़िंदगी इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दी, और आप कह रहे हैं कि हम इन्हें माफ़ कर दें? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा दादाजी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इसलिए रोका हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि झलक इन्हें सज़ा दे, वरना अब तक तो मैं अपनी बंदूक से इन सब की जान ले चुकी होती। तभी दादाजी हल्की लेकिन ठंडी आवाज़ में बोले थे, बेटा तुम्हें क्या लगता है, जिन्होंने हमारे बच्चे की ज़िंदगी के इतने खूबसूरत साल छीन लिए, क्या हमारा खून नहीं खौलता होगा उन्हें देखकर? लेकिन जानते हो मेरे पिताजी क्या कहते थे, गरम गरम नहीं ठंडा करके खाओ। अगर हम गुस्से में आकर सीधी गोली मार देंगे तो एक ही पल में उनकी जान चली जाएगी, तुम ही बताओ उसमें फ़ायदा क्या होगा? उन्होंने हमें जो सालों साल दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, क्या हम उसे एक पल में ख़त्म कर दें? नहीं, उन्हें हर पल उस दर्द का एहसास होना चाहिए। लेकिन तभी झलक, जो लाल आंखों से लगातार टीवी स्क्रीन को देख रही थी, उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अंदर ही अंदर खुद को शांत किया और सीधा दादाजी के सामने जाकर खड़ी हो गई। दादाजी की ओर देखकर वो बोली, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरम गरम खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें ठंडा करके खाना चाहिए, और आज से अभी से मैं इन सब लोगों को माफ़ करती हूँ। जैसे ही झलक ने ये कहा, दादाजी के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट आ गई। वहीं अनामिका के लिए ये सारी बातें समझ पाना मुश्किल हो रहा था, उसका दिमाग इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वो तो दादाजी से लगातार कितने ही सवाल कर रही थी, दादाजी ये खाना ठंडा गरम खाने का और दुश्मनों से बदला लेने का आखिर मतलब क्या हो सकता है? आप लोग कौन से कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा? वहीं झलक तिरछी मुस्कान के साथ सीधा अपने कमरे में चली गई। अनामिका की इस तरह की बातें सुनकर दादाजी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोले थे, तुम ना एक नंबर की बुद्धू हो, जो बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। मेरी तो असली पोती जाक है, मेरी परछाई तो पूरी तरह से झलक ही है, जो बिल्कुल मेरे जैसा सोचती है। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अनामिका ने मुंह फुला लिया और अपने पिता को गले लगाते हुए बोली, ठीक है दादाजी, रहो आप अपनी झलक के साथ। अरे मैं तो अपने पापा की परछाई हूँ, मुझे इस बात का घमंड है, समझे आप? अनामिका की ये बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए और उसके कान खींचते हुए बोले, कितना बोलती हो तुम, कितना ज़्यादा बोलती हो, कभी कभी खुद को थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं दे देती हो? फिर दादाजी थोड़ा खुद को सीरियस करते हुए बोले, बेटा तुम जानती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है? अनामिका ने गर्दन हिलाई और फिर सीधा झलक के कमरे की ओर चली गई। वहां जाकर उसने झलक को बिजनेस क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। साथ ही उसकी इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट करने के लिए भी उसने कुछ क्लासेस अरेंज कर दी थी। वो जानती थी कि झलक कितनी ज्यादा मेहनती है और वो आसानी से सारी चीजें कवर कर लेगी और सब कुछ सीख लेगी, और इसके लिए उसे सिर्फ 7 दिन मिले थे। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आज आकांक्षा और सिद्धार्थ की सगाई पूरे धूमधाम के साथ हुई थी। मीडिया को पहले ही अच्छे से समझा दिया गया था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि झलक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सके। सब कुछ बड़ी सादगी और अच्छे ढंग से निपट गया था। दादी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इस वक्त ओबेरॉय परिवार की समाज में इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उन्हें एक माँ के तौर पर देखा जाने लगा था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्दी वो और भी बड़े प्रभावशाली लोगों की कतार में खड़ी होंगी। हर जगह पार्टी के लोग मौजूद थे और सगाई बड़े ही धूमधाम से हुई थी। सिद्धार्थ किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार सिर्फ आकांक्षा पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसमें झलक का चेहरा तलाश कर रहा हो। आखिरकार दोनों एक दूसरे की हमशक्ल जो थे, लेकिन झलक की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और उसके होठों के पास का काला तिल उसे कहीं ज्यादा आकर्षक और खास बनाता था। फिलहाल जैसे ही सगाई का फंक्शन पूरा हुआ, आकांक्षा तुरंत सिद्धार्थ का हाथ थामकर उसे एक अलग स्पेस में ले गई। उसकी ओर देखकर वो बोली, सिद्धार्थ मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तुम्हारा इरादा कभी झलक से शादी करने का था ही नहीं। सिर्फ उसकी की गई कुछ बेवकूफियों और समाज में हो रही बदनामी से खुद को और उसे बचाने के लिए तुमने वो शादी की थी, लेकिन मेरा दिल जानता है कि तुम आज भी पूरे दिल से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहते हो। आकांक्षा की प्यार भरी बातों पर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बिना कुछ बोले सामने देखता रहा। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ने आकांक्षा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आकांक्षा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और वो थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से उसके होठों को चूम लिया। आकांक्षा ने बोली, अभी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा सा अकेले में समय बिताना चाहती हूँ। आकांक्षा की आंखों में पूरी तरह जज्बात थे जो वो सिर्फ सिद्धार्थ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा कुछ था जो सिद्धार्थ को उसके करीब होने से रोक रहा था। इतना ही नहीं, आकांक्षा को यह भी पता था कि सिद्धार्थ उसकी किसी भी पहल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उसने खुद पहल करते हुए धीरे धीरे सिद्धार्थ को फिर से चूमना शुरू किया। सिद्धार्थ चाहकर भी उसे पूरी तरह से अपना साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी आकांक्षा ने धीरे धीरे और स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, सिर्फ एक बार सिद्धार्थ प्लीज। ये सुनकर सिद्धार्थ उसके और भी करीब चले गए। आकांक्षा को पास पाकर वो खुद को अब रोक नहीं पाए और उसे गले लगाकर धीरे धीरे अपने हाथों से उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया, जिसे आकांक्षा सिहर उठी। अब आकांक्षा की हल्की सिसकी सुनकर सिद्धार्थ काफी उत्तेजित हो गया और उसने उसे पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। उसकी नेक कमर हर जगह प्यार करने लगा। दोनों काफी हद तक एक दूसरे में समाने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच की दूरी काफी हद तक घट गई थी और भावनाओं का ये पल और भी घना होता चला गया, लेकिन अभी भी उनके बीच एक अधूरी कहानी थी जो पूरी तरह से अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई।
आकांक्षा को ये बहुत बुरा लगा और मन ही मन उसने गुस्से में कुछ शब्द कहे, लेकिन सिद्धार्थ तुरंत उठकर बालकनी में चला गया। साथ ही उस वक्त उसे एहसास हुआ कि जिस तरह का बर्ताव अभी उसने आकांक्षा के साथ किया था, वो अंदर अंदर उन्हें थोड़ी शर्म और पछतावे का एहसास करा रहा था। वो उठकर वहां से बाहर चला गया और दोनों के बीच की अधूरी खामोशी उस पल और गहरी हो गई।